ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಪನ್ನ ಔರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಪಾನೆ ವಾಲಿ ಇಸ್ ಯೋಗ ತಪಸ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಸನ್ಮುಖ ಪರಮ ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೀದಿ ಜೀ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೇ. ಹಮ ಸಭಿ ಭಾಯಿ ಬಹನೆ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜೀ ಕಾ ಏಕ ಹಾತ್ ಕಿ ತಾಲಿ ಬಜಾಕರ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ. ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೀದಿ ಜೀ, ಸಾಕಾರ ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ಪಾಲನಾ ಕಾ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ್ ಹೇ. ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ದೀದಿ ಜೀ ಕೋ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ ಕರ್ತಾ ಥಾ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ದೀದಿ ಜೀ ಕಿ ಜೊ ಸತ್ಯತಾ ಕಿ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ಊಂಚಿ ಧಾರಣಾ ರಹಿ ಹೇ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸಾಕಾರ ವಾಣಿ ಮೇ ಅಭಿ ಭಿ ದೀದಿ ಜೀ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರ್ಣನ ಆತಾ ಹೇ, ಯೇ ಬಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಲ ಆಶ್ರಮ ಹೇ. ತೋ ದೀದಿ ಜೀ ಕಿ ಸತ್ಯತಾ ಔರ್ ಪವಿತ್ರತಾ ನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕಿಯಾ. ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೀದಿ ಜೀ, ಜಬ್ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾ ಅಭಿ ಶುರು ಹುಯಿ ಥೀ ಉಸ್ ಸಮಯ ಸಮರ್ಪಣ ಹುವೆ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ ನೆ ಆಪ್ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ದೂರ್ ದೂರ್ ದೇಶೋ ಮೇ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಪೂರೆ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಸೇವಾ ಅರ್ಥ ಚುನಾ. ಆಪನೆ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಘೂಮ ಕರ್ ಪ್ಯಾರೆ ಬಾಬಾ ಕಾ ಸಂದೇಶ ದಿಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ವಿಶೇಷ ಬಾಬಾ ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಾದ್ವೀಪ್ ಕಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾಓ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನಾಯಾ. ಔರ್ ಏಕ ಅದ್ಭುತ ಬಾತ್ ಹೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಜಿನ್ಕೋ ಹಮ್ ಕಹಿ ಸಕ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ವಾರಿಸ್ ಬಚ್ಚೆ, ಅನನ್ಯ ಬಚ್ಚೆ, ಜಿನ್ಕಿ ಮಾಲಾ ಆಪ್ನೆ ತಯಾರ್ ಕಿ. ಆಜ್ ಭಿ ವೋ ಆತ್ಮಾಯ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಬನ್ಕರ್ ವಿಜಯ ಮಾಲಾ ಕಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬನ್ ಗಯಿ ಹೇ. ಔರ್ ಅಬ್ ತೋ ದೀದಿ ಜೀ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ್ ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಹಿ ಸೇವಾ ಪರ್ ರಹತೆ ಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಏಕ ವರ್ಷ ಕಾಫಿ ಸಮಯ ದೀದಿ ಜೀ ವಿದೇಶೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೇ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಭಾಗ್ಯ ಹೇ ಕಿ ಆಜ್ ಹಮ್ ದೀದಿ ಜೀ ಕೆ ಶ್ರೀಮುಖ ಸೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬತಾಯ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಚನ್ ಸುನೆಂಗೆ. ಆಜ್ ಕಾ ಜೈಸಾ ಹಮಾರಾ ವಿಷಯ ಹೇ ಕಿ ಹಮ್ ಅಶರೀರಿ ವಿದೇಹಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈಸೆ ಪಕ್ಕಾ ಕರೆ, ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪರ್ ಆದರಣೀಯ ನಿರ್ಮಲಾ ದೀದಿ ಜೀ ಹಮಾರಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕರೆಂಗೆ. ಫಿರ್ ಏಕ ಬಾರ್ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ ಸೆ ದೀದಿ ಜೀ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ದೀದಿ ಎ ಹಾಸಿ ಔರ್ ಬರೇಲಿ ದೋ ಸ್ಥಾನೋ ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಹೇ, ಲಗಭಗ ಸವಾ ದೋ ಸೋ ಭಾಯಿ ಬಹನೆ ಹೇ. ಔರ್ ಯೇ ಹಾಸಿ ಔರ್ ಬರೇಲಿ ಸೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಘರ್ ತಪಸ್ಯಾ ಭಟ್ಟಿ ಮೇ ಆಯೆ ಹೇ. ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜೀ
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ನೇ ಹಮಕೋ ಪಹಲಾ ಲೆಸನ್ ದಿಯಾ ಹೇ, ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಆತ್ಮ ಸಮಝೋ, ದೇಹ ಕೋ ಭೂಲೋ, ದೇಹಧಾರಿಯೋ ಕೋ ಭೂಲೋ ಔರ್ ಮುಝೆ ಏಕ್ ಕೋ ಯಾದ ಕರೋ. ತೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಯೇ ಪಹಲಾ ಲೆಸನ್ ಪಕ್ಕಾ ನಹೀ ಹೈ ತಬ್ ತಕ್ ಹಮಾರಿ ತಪಸ್ಯಾ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಹೋಂಗೆ. ಔರ್ ಆಜ್ 83 ವರ್ಷ ಹೋ ಗಯೆ, ಫಿರ್ ಭಿ ಬಾಬಾ ಕೋ ಯಹಿ ಪಾಠ ಪಕ್ಕಾ ಕರಾನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಕೈ ಬಚ್ಚೆ ಕಹತೆ ಬಾಬಾ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಕ್ಯೂ ಕಹತೆ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಆತ್ಮ ಸಮಝ ಮುಝ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ ಕರೋ, ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ತೋ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ದೇಖೋ ತುಮ 24 ಘಂಟಾ ಆತ್ಮ ಭಾನ್ ಮೇ ರಹತೋ, ನಾಲೆಜ್ ತೋ ಹೈ ಪರಂತು ಉಸ್ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ರಹನಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೋ ಜಾತಾ. ಸೋಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೆ ಬಜಾಯ ಕೈ ಹೈ ಕರ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬನ್ ಜಾತೆ, ಯೇ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಹೈ ವೋ ಕಾಮ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಐಸೆ ಕರ್ನಾ ಹೈ ವೈಸೆ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಆದಿ ಆದಿ. कोई अपनी पोजीशन के कॉन्शियस में रहते हैं, भल गृहस्थी है घर में ही रहते हैं तो भी ये रहेगा, मैं माँ हूँ मैं सासू हूँ, अपनी पोजीशन के कॉन्शियस में रहते हैं। हाँ, तो अभी जो हमारे 63 जन्म के संस्कार है देहभान में रहने के, अभी वो मिटाकर सोल कॉन्शियस में रहना है। तो इसलिए पहले तो अपने को चेक करना है कि हमारे 63 जन्म के संस्कार हमने मिटाए हैं या अभी तक है। क्योंकि देहभान के संस्कार में क्या होता है, जिसका देहभान होता है ना वो बाह्यमुखी होता है, कहां भी जाएगा देखेगा पर्दे कैसे है, फर्नीचर कैसा है, सजावट कैसी है, तो स्थान को देखेगा ये कमरा बड़ा है या नहीं, और भेंट भी करेगा कि फलाने फ्लैट से यहाँ के फ्लैट के कमरे बड़े हैं छोटे हैं आदि आदि। कोई व्यक्ति को देखेगा तो सोचेगा ये पंजाब का है हरियाणा का है यूपी का है कहाँ कहाँ, इसकी बॉडी कैसी है, मोटी है या पतली है, काले है या गोरे है, बाल लंबे है या छोटे है, साड़ी ब्लाउज मैच होता है या नहीं। दुनिया में जाएंगे तो ये जरूर देखेंगे कि साड़ी ब्लाउज मैच होता है या नहीं, और फिर सोचेंगे ये तो साड़ी बहुत अच्छी है, चलो पूछूं कहां से ली कितने में ली आदि आदि। तो उनका देह के तरफ ध्यान जाएगा, देहधारियों के तरफ ध्यान जाएगा, मटीरियल वैभव के तरफ ध्यान जाएगा। जो जिसका शौकीन होगा, जो गृहस्थी होगा उनकी नजर गहनों तरफ भी जाएंगी, रास्ते में गुजरते विंडो शॉपिंग भी करेंगे कि विंडो में क्या क्या है, कौन सी लेटेस्ट फैशन का ड्रेस है, कौन सा लेटेस्ट फैशन का कलर है, जवाहरात का जिसको शौक होगा उसको देखेगा। तो बाह्य मुखी है वो बाह्य की बातों को देखेगा, और जो देही अभिमानी है आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा। तो आत्म स्वरूप में स्थित है तो शांत चित्त स्नेह स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप असली स्वरूप में रहेगा। देही अभिमानी आत्मविश्वास होगा, तो पब्लिक में लेक्चर देना होगा किसी से बातचीत करनी होगी तो नर्वस नहीं हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, नर्वस हो जाता है कि इतने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वीआईपी है, कैसे बात करें। पर आत्माभिमानी बाबा की याद में बोलता रहेगा। जो देह अभिमानी है ना उसको अपने पर दया आएंगी, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई मेरी कोई सराहना नहीं करते हैं, तो उसको स्वमान की कमी होगी और सोचेंगे देखो मेरी माँ है, मेरी बहन को तो प्यार करती है, मेरे भाई को तो प्यार करती है, मुझे नहीं करती। और जो देह अभिमानी है वो चाहेगा कि सबका अटेंशन हमारे तरफ जाए। ऐसे प्रभावित करने वाले कपड़े पहनेंगे, नखरे करेंगे ताकि सब उसको देखें। और देही अभिमानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, बाबा की याद में मस्त रहते हैं। और जो देह अभिमानी है, समय संकल्प धन सब व्यर्थ गवाएंगा ना, क्योंकि शरीर को संगाना है, कपड़े भी नए खरीदना है, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और अच्छे कपड़े देखेंगे तो कहेंगे चलो आज ये खरीद कर ले। घर में कितनी भी साड़ियां होंगी और अच्छा देखा खरीद लिया। और प्रदर्शन में टाइम गवाएंगा, पर चिंतन में टाइम गवाएंगा, तो संकल्प समय धन सब व्यर्थ गवाएंगे। जो दे अभिमानी होंगे उसको शर्म आएंगी, चिंता होंगी, क्योंकि मैं करता हूं ये भान रहता है ना, चिंता हो जाती है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा परिवार है, तो चिंता हो जाती है। और जो देही अभिमानी है, बाबा की याद में है, बाबा करावनहार है, ज्ञान है, ड्रामा में जो कुछ होगा अच्छा होगा, तो इसलिए उनको चिंता नहीं। सो देही अभिमानी है सिंपल सादगी से, जैसे हम है सफेद कपड़े पहनते हैं, तो हमारी जीवन सादगी वाली है। बाबा हमेशा कहते हैं न बहुत ऊंचा कपड़ा हो, महंगा हो, ना बहुत नीचा हो, क्योंकि कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो इसलिए बाबा कहते हैं मीडियम, बीच वाला, न बहुत महंगा हो न बहुत सस्ता हो, जो भी है, चाहे फर्नीचर है, पर्दे है, कपड़े हैं, घर है, जो भी है, जो देही अभिमानी है प्रसन्न चित्त है, हर्षित मुख है। और जो देह अभिमानी है बड़े बड़े आवाज से हंसेगा, कुड़ी करेगा, किसी की मजाक करेगा आदि आदि। और कई है देह अभिमान में होते हैं ना, तो उनको बाहर का श्रृंगार करने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्यूटी सलून में जाना पड़ता और उसके कारण वो धन भी और समय भी खर्च करते हैं। और कोशिश करेंगे कि दूसरों को हम बाहर के दिखाव से प्रभावित करें। और कई तो है आजकल तो क्या फैशन है, पतली कमर चाहिए, तो क्या करेंगे, डाइटिंग करेंगे, वेट रोज करना पड़ेगा, कम से कम हफ्ते में एक बारी वेट करेंगे, अपना माप करेंगे कि कमर में कितना माप है, इंची, और आजकल तो सर्जरी भी कराते हैं कि फैट कम हो, आंख ऐसी हो, नाक ऐसा हो, होस्ट ऐसे हो, तो इसलिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, क्या क्या कराते हैं। और देही अभिमानी, बाबा मुझे प्यार करता है, औरों की क्या परवाह, तो उसको बाह्य श्रृंगार करने का शौक नहीं रहता है। और अंतर्मुखी, तो कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, अपने आप को निरीक्षण करता रहता है, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए अपना चार्ट देखता है कि मैंने देह अभिमान के वश या कोई भी विकार के वश, क्योंकि देह अभिमान सब विकारों की जड़ है, तो विकारों की जड़ है तो फिर किसी को दुख देंगे, रफ दफ बोलेंगे, तो इसलिए देखना है कि बाबा ने जो कहा है कि भाई भाई की दृष्टि, लौकिक में रहो परंतु बुद्धि में ये नहीं आवे ये मेरा पति है या मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है, नहीं, सब बाबा के बच्चे। तो भाई भाई की दृष्टि, अलौकिक वृत्ति पक्की हो ताकि मोह ना पड़े, नहीं तो मोह पड़ जाता या आकर्षित हो जाते हैं किसी के प्रति, कोई खूबसूरत है, अच्छी पर्सनालिटी वाला है तो आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए पहले तो अपने को देह भान से न्यारे, देही अभिमानी रहने का बहुत पुरुषार्थ करो, फिर दूसरी स्टेज आएंगी विदेही अर्थात अशरीरी। क्योंकि जब हमारा पहला लेसन पक्का होता है तब तक हम क्या करते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, शरीर ही मेरा है, मैं हाथों से काम करती हूँ, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, तो जरा शरीर का भान तो रहता है ना कि मैं ये करती हूँ शरीर से। परंतु फिर अशरीरी अवस्था में जैसे फरिश्ते बनकर उड़ते रहेंगे, ये पंच तत्व के शरीर का भान भूल जाएंगे और बुद्धि में रहेगा कि मेरे में मेरा लाइट का शरीर है। जैसे सूक्ष्म वतन में फरिश्तों का लाइट का शरीर होता है और कोई आकर्षण नहीं, न देह की, न देहधारियों की, न वस्तु वैभव की, क्योंकि जब तक शरीर से परे नहीं होंगे तो हम उड़ नहीं सकेंगे। अभी फरिश्ता बन के अशरीरी बन के उड़ता रहना है। तो फरिश्तों का क्या है, मैं एक, मेरा एक, और किसी से रिश्ता नहीं, बाकी सब बाबा के बच्चे, सबसे प्यार भी हो पर सबसे न्यारा, अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, घर गृहस्थ में रहकर जो भी जिम्मेवारी है वो भी निभानी है, परंतु ये नहीं कि हम सारा दिन घर गृहस्थी में चलते रहें, पढ़ाई का नाम नहीं या योग का नाम निशान नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ाई पर भी ध्यान, योग पर भी ध्यान, कर्म करते करते योग करते रहें, तो कर्मयोगी बनना है। थोड़ा आगे आ जाओ माताएं, और आगे भी बैठने की काफी जगह है, जिनको पट पर बैठना है आगे आ सकते हैं। तो ये देखना है कि किसी से मुंह का रिश्ता नहीं, मेरापन नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं। जब ये बुद्धि में होगा, मेरा तो एक बाबा तो एक को ही याद करेंगे, अनेक मित्र संबंधी है तो सब याद आएंगे। इसलिए ये पक्का रखना है, और ये हमेशा याद करना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। ऐसे नहीं मैं गृहस्थी हूं। गृहस्थी के बजाय अभी क्या करना है, ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनकर संभालो, क्योंकि बाबा कहते हैं घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहो, परंतु ट्रस्टी बन के संभालो। और ट्रस्टी का क्या होता है, ट्रस्ट के जो नियम है उस अनुसार चलते हैं। जिसको देना होता है उसे देते हैं, जिसने लिया दिया है वो संभालते हैं। अभी उसको ट्रस्ट में डोनेशन मिलेगा, उसका नशा नहीं चढ़ेगा कि मेरे ट्रस्ट में इतना पैसा है। गृहस्थी क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा तो नशा चढ़ेगा, हाँ हमारे पास इतना पैसा है। और गृहस्थी क्या करेंगे, कभी नुकसान हुआ, पैसे की कमी हुई तो चिंता हो जाएंगे। ट्रस्टी को किसी को देना पड़ेगा तो दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। आया है ले लो, गया गया। तो इसलिए घर गृहस्थ में रह के एक तो ट्रस्टी बनना है, अपने आप को स्टूडेंट समझना है। और स्टूडेंट की बुद्धि में क्या होगा, पढ़ाई। तो इसलिए पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कौन है जो मुरली रोज कम से कम एक बार सुनता है या पढ़ता है, जरा हाथ उठाना। अच्छा, मेजोरिटी तो है पास। कौन है जो हमेशा अमृत वेला करते हैं, जरा हाथ उठाना। 70%। तो क्या है, गॉडली स्टूडेंट माना पढ़ना, और फिर पढ़ाई को मनन मंथन करके धारण करना है। ऐसे नहीं कि मुरली सुन ली नियम अनुसार, परंतु आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है उस पर मनन चिंतन करके धारण करना है। क्योंकि अवस्था तब बनेगी जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, योग तब लगेगा जब बुद्धि संपूर्ण पवित्र होंगी, कि बुद्धि में अंश मात्र भी मोह ना हो, लोभ ना हो। अहम नाम, क्योंकि अहम वाला क्या करेगा, सारा दिन अपनी बढ़ाई करता रहेगा, मैं ये हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मैंने ये किया, मेरा परिवार ये है, ऐसा है, वैसा है, और दूसरों को अपमान करेगा, तुम तो बुद्धू हो, काम काज करने आता नहीं है, चार बार कहा तो भी नहीं कीती करते हैं, तो उसको नीची नजर से देखेंगे और खुद को बहुत बड़ाई करते रहेंगे। तो अहम भी अंश न हो, क्योंकि अहम होगा फिर गुस्सा आएगा, मैंने कहा है, मैं मां हूं, मैंने कहा है, तुमने क्यों नहीं किया, या मैं बाप हूं, मैं कहता हूं यही करना है, वही पढ़ना है, यही करना है, तो फोर्सफुल होते हैं फिर। तो ये देखना है, अहम का अंश ना हो, ममत्व ना हो, गुस्सा ना हो, क्यों गुस्सा करने से क्या होगा, पहले खुद जलेंगे ना, अंदर खुद दुखी होंगे, औरों को दुखी करेंगे, कर्मों का हिसाब किताब बनेगा। भल करके हम सोचते हैं कि चलो हमारे बच्चे का कल्याण हो, अच्छी रीति पढ़े, अच्छे मार्क्स लावे आदि आदि, पर गुस्सा किया तो क्या होगा, आपके ऊपर पाप चढ़ेगा ना। और आजकल के बच्चे चलो छोटे हैं तब तक तो आपका गुस्सा सहन कर लेंगे, जरा बड़े हुए तो सामने जवाब देगा और उनको कहो अभी रात है, कहेगा नहीं दिन है, अभी हमारी पार्टी में जाने का टाइम है, उसको कहे दिन हुआ सवेरा जल्दी उठो, कहे नहीं अभी तो हमारे नींद पूरी नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया में एक माँ आती, वो कहे 4 बजे में योग के लिए सेंटर पर आती हूँ और मेरा बच्चा सारी रात पार्टी करके 4 बजे घर आता है, फिर 12 बजे उठेगा। तो आजकल के बच्चों को फोर्स से नहीं कह सकते हैं, प्यार से कहेंगे तो सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे उस पर। नहीं तो विदेश में तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट है ना, जो अनाथ बच्चे हैं घर छोड़ के जाते हैं उनको हर हफ्ते पैसा देती है। तो हमारे पास कई ऐसे हैं जो 16 साल हुआ घर छोड़ के चले गए, कहेंगे हम रास्ते पर सोना पसंद करेंगे माँ बाप की, हम गुस्सा पसंद नहीं करेंगे। पैसा मिल जाता है खाने पीने का, फिर क्या, न घर न बार न कुछ। तो इसलिए हमें बच्चों को भी बैलेंस से चलाना है, जो भी घर में है या नौकर है या हमारे अंडर काम करते हैं ना, बाबा कहते हैं लव और लो का बैलेंस रखो, डिसिप्लिन भी सिखाओ पर प्यार भी दो। तो क्या होगा, प्यार के वश बच्चे आपकी मानेंगे, नहीं तो चलो चला भी लिया, शादी की नौकरी मिली, ओम शांति, आप अपना घर संभालो, हम अपना घर संभालेंगे। और बूढ़े हुए, जाओ बुढ़ई घर में। अभी अभी एक माताओं की कॉन्फ्रेंस में एक बहन सुना रही थी कि एक माँ का पति गुजर गया था, दो बच्चे थे, तो दो दो काम करके बच्चों को बड़ा किया। तो किसी ने उसको कहा कि थोड़ा अफीन लिया करो तो क्या होगा, आप ज्यादा काम कर सकेंगे। तो उसने अफीन लेना शुरू किया और अब बुढ़ी हुई तो बच्चा कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हारी ये आदत चलाने का। सेंटर पर ले आया कि हमारी माँ को समझाओ कि ये छोड़ दे वे आदत। तो क्या है कि कई बार तो हमने सुना है बंबई में तो इतने तक करते हैं, बूढ़े घर के बाहर रख के पेरेंट्स को चले जाएंगे, अंदर भी नहीं ले जाएंगे, अपना एड्रेस भी नहीं देंगे, कुछ खर्चा भी नहीं देंगे। तो क्या है कि जितना आप बच्चों को प्यार से पालना देंगे, बच्चे भी आपकी प्यार से बुढ़ापे में पालना करेंगे। यदि खिटखिट करेंगे तो बहू को तो यही चाहिए, सासू को निकालो घर से या हम चले जाएं। तो इसलिए जितना आत्मभान में रहेंगे ना, प्यार से देखेंगे, निंदा करने वाले को भी मित्र बनाएंगे, उनको भी प्यार की दृष्टि से देखेंगे, सुभावना रखेंगे। नहीं तो कहेंगे दे भान है तो तुमने एक मारी, मैं दो मार सकता हूं, तो जैसे के साथ वैसा बन जाता है। तो इसलिए बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको हमें जीवन में लानी है और ये देखना है कि काम काज करते करते बाबा की याद में रहे। ऐसे नहीं काम काज करते करते अच्छा हमारे पति को क्या अच्छा लगेगा, कितना नमक चाहिए, बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, उसके लिए क्या बनावे। बाबा के लिए भोजन बनाते हैं या पति और बच्चे के लिए? जिसकी याद में भोजन बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसे अन्न वैसा मन बनेगा, अरे मन वैसा अन्न बनेगा। तो इसलिए ये देखना है कि आत्मभान में रहकर बाबा की याद में सब कुछ करो तो क्या होगा, थकावट नहीं लगेंगे, नहीं तो थकावट लगेंगे। देवभान में आया थकावट, आज भी बाबा ने कहा ना, उमंग उत्साह नहीं थकावट, आलस्य है, कहेंगे मैं थक गई हूं, मेरा तबियत ठीक नहीं है, आप जरा काम कर लो ना, तो दूसरे को काम सौंप देंगे। तो इसलिए ये देखना है सूक्ष्म में भी अलबेलापन ना हो, नहीं तो सवेरे कौन उठेगा, अलबेलापन होगा तो सवेरे क्यों उठेंगे, कहेंगे अभी सारा दिन योग करना है ना, बाबा कहते काम काज करते योग करो, रात को देरी से सो गए तो सवेरे कैसे उठेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा 10:30 के पहले सो जाओ और जल्दी उठो। तो क्या है कि जितना सवेरे सोएंगे सवेरे उठेंगे, हमारी सवेरे की योग तपस्या भी अच्छी रहेंगे। जितना खाना बाबा की याद में पकाएंगे, भोग लगाकर बाबा की याद में खाएंगे, हमारा योग ठीक रहेगा। तो आत्म अभिमानी रहने से फिर क्या होगा? नेचुरली योग भी रहेगा, पवित्रता भी आती जाएंगे। देहभान में होने से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होंगे। तो इसलिए जैसे भी टाइम मिले क्या करो, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन को अपना बेडरूम समझो। तो लोग क्या करते हैं, फ्री हुए बेडरूम में चले जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। तो इसलिए जैसे भी फ्री हो जाओ बेडरूम में चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो जब अशरीरी रहने की प्रैक्टिस होगी तो जब चाहे शरीर में आके काम करेंगे, जब चाहे शरीर से पार उपराम होकर सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। और विशेष जब योग में बैठते हैं, अमृत वेला, मुरली के पहले, शाम को आधा घंटा, उस समय जो भी पुराने हैं, नए हैं वो तो चिंतन करेंगे, मनन मंथन करेंगे, पर पुराने हैं उनको क्या करना है, फौरन सूक्ष्म वतन में जाना है, फौरन परम धाम में बिंदु बनकर बिंदु बन के जाना, बिंदु को याद करना और बिंदु बनकर बिंदु को याद करने के क्या लिए तीसरा बिंदु चाहिए, फुल स्टॉप। पास्ट की बातों का बिल्कुल चिंतन न, और भविष्य के लिए चिंता नहीं, फालतू संकल्प नहीं, क्योंकि नेगेटिव संकल्प ना हो, अपवित्र संकल्प भी ना हो, परंतु फालतू संकल्प भी ना हो, इस पर बड़ा ध्यान देना पड़े। तो इसलिए यहां आए हो, यहां का वातावरण कितना शुद्ध है, इस शुद्ध वातावरण में क्या करना है, आत्मिक भान में तो रहना है, अशरीरी होकर चलते फिरते रहना है, अपने आप को याद करो, सवेरे उठो याद दिलाओ, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से अभी मूल वतन में सूल वतन में आया हूं। शाम को सोते समय भी क्या करो, अभी हमारा साकार वतन का पाठ पूरा हुआ, अभी हम सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाकर सोएंगे। और चलते फिरते भी बाबा को अपना साथी बनाकर चलो। और जो भी सीन हो रही है, क्योंकि आसपास कई प्रकार के सीन होंगे ना, उसको साक्षी बनकर देखो, क्यों क्या कैसे, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए आदि आदि, मन में फालतू संकल्प नहीं आने दो। तो जितनी साक्षी दृष्टा अवस्था रहेंगे उतना व्यर्थ संकल्प से परे रहेंगे, नहीं तो हमारी जो आदत पड़ी हुई है ना, पहले तो देखेंगे क्या है कैसा है, फिर सोचेंगे ये क्या, ऐसे क्यों नहीं, तो जज करने की आदत है, ये ठीक है या नहीं। अपने लिए जज नहीं बनेंगे, अपने लिए वकील बनते हैं ना, कि मैंने ये काम इसलिए किया है कि ये परिस्थिति थी, तो अपनी वकीलात करेंगे, अपना बचाव करेंगे, और दूसरों के लिए कहेंगे ये क्या, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसे मन में भी व्यर्थ संकल्प, और जिसके प्रति व्यर्थ संकल्प है, आजकल लोग क्या है, बहुत सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, परख जाएंगे कि आपके मन में क्या संकल्प चलते हैं, कि हमारे लिए क्या भाव है, तो क्या होगा, मैत्री बनेंगी या दुश्मनी ना? तो इसलिए अपना क्रिटिसाइज करने के संस्कार, जज करने के संस्कार, ये छोड़ देना, साक्षी बनकर देखते रहो। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, हमारा काम क्या है, औरों को गाइड करना। फरिश्ते क्या करते हैं, सबको गाइड करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को याद रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और चैरिटी घर से शुरू करनी है, पहले घर वालों को मदद करना है। तो जितना आप एग्जाम्पल बनेंगे, घर वाले आपको फॉलो करेंगे, अभी ना तो कभी तो करेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कदर नहीं है उनको घर वालों की। जैसे कहते हैं ना, गंगा के तट पर गंगा की कदर नहीं है, दूर वाले आते हैं, माइलों के माइल चलकर आते हैं, और घर वाले घर वालों को शिक्षा देंगे तो कहेंगे हाँ जाओ, तुम्हारे बाबा ने कहा तुम सुनो, हमको नहीं चाहिए। परंतु जब देखेंगे कि आप शांत बन गए हैं, अभी खिटपिट नहीं करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो वो भी एक न एक दिन जरूर आ जाएंगे। आज सवेरे ही एक भाई हमको मिला, कहता है कि उसकी पत्नी थोड़े समय से ज्ञान में आ रही थी, तो उसको ड्राइवर ले जाता था क्लास में, 6:30 से 7:30 क्लास में ड्राइवर ले जाता था। तो वाइफ ने कहा कि मुझे ऐसा कोई ड्राइवर चाहिए जो सवेरे स्नान करके आए और बीड़ी ना फूके। तो कहा कि उसने कहा 3 दिन में मैं देती हूं, नहीं तो फिर आपको हमको ले जाना पड़ेगा सवेरे क्लास में। तो कहे कि मेरा टाइम था 5:30 से 7 एक्सरसाइज करने का, और वाइफ का काम था 6:30 से 7:30 क्लास करने का। तो उसी दिन ऑफिस में कोई आया उसके काम के लिए, तो उसने पूछा आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, काम क्या है। तो उसने कहा मैं 5:30 उठता हूँ, फिर नहा धो के पूजा पाठ करके ड्राइविंग का जॉब करता हूँ। तो कहा कि मैंने कहा अच्छा, मेरी वाइफ को 6:30 से 7 आप ले जाओ, ड्राइविंग करो, मैं आपको पगार दूंगा। उसने मान लिया। तो कहा कि फिर वो रोज ले जाने लगा, और वो भी ज्ञान में आ गया, और पति भी कुछ सालों के बाद आ गया ज्ञान में। तो क्या है कि जब हम अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, तो परिवार वाले भी मदद करते हैं, कि भाई आपको ये सुविधा चाहिए जाओ। तो इसलिए गृहस्थ में रहकर हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनना, कोई भी विकार के वश नहीं होना, स्पेशली गुस्सा। आप गुस्सा करेंगे ना तो आपके बच्चे भी कहेंगे मम्मी ओम शांति, तुम ओम शांति में जाती हो ना, वो याद कराएंगे कि तुम ओम शांति में जाती हो, गुस्सा क्यों करती हो। तो इसलिए अपना अभ्यास ऐसा पक्का हो कि न सिर्फ खुद को फायदा हो, परिवार को फायदा हो, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आए, नौकरी पर, धंधे पर, वो सब कहें कि आपके सानिध्य में हमको बहुत शांति मिलती है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में बहनें थी, कहती थी हम ऑफिस में जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि आपके आने से यहाँ शांति का वातावरण है। और एक बहन थी, रोज एक कार पार्किंग में अपनी कार पार्क करके नौकरी पर जाती थी, पर हंसती हंसती जाती थी तो पार्किंग में फी लेने वाला कहता है तुमको नौकरी पर जाने में इतनी खुशी है क्या। तो एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि भाई इसने मेडिटेशन से इतना फायदा लिया है। लंदन में एक भाई था, ज्ञान में था, उसके ऑफिस वालों को मालूम था ये रोज 4 बजे उठता है और शाम को 4:30 बजे सब ऑफिस वाले घड़ी देखते हैं कब छुट्टी हो, कब हम घर जाएं। और ये भाई तो अपनी फुर्ती से काम करता रहे तो ये लोग कहे कि ये क्या, तुमको कितनी शक्ति मिलती है जो 12 घंटा समझो जागृत रहकर भी इतनी स्फूर्ति से काम करता है। तो क्या है कि एग्जाम्पल बनने से क्या है, औरों को कम से कम ये होगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे देखो ब्रह्मा कुमारी सवेरे सवेरे सफेद कपड़े पहनकर चल पड़ी, ना बच्चों को देखती है ना परिवार को देखती है, तो ग्लानी करेंगे। पर आपके अंदर जब सुधार आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तो घर वाले भी खुश रहेंगे और नौकरी में भी जो भी आसपास है खुश रहेंगे, क्योंकि योग से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और फिर एक बहन कहती थी मेरा काम जल्दी हो जाता है तो हमारे जो साथी है कहेंगे जरा मेरा ये काम कर दो ना, तो कर देती है तो स्नेह का संबंध बन जाता। ओम शांति, 2 मिनट बाबा की याद में।
शांति। दीदी जी ने हमें प्रवृत्ति मार्ग में रहते कैसे अपनी आत्मिक स्थिति से स्व परिवर्तन से एग्जाम्पल बनना है, स्वयं के जीवन की धारणाओं से पहले परिवार की सेवा करनी है, अपने बच्चों को संबंधियों को भी स्व परिवर्तन से एग्जाम्पल बनना है। प्यारी दीदी जी ने बहुत सुंदर युक्तियां बताई, दीदी जी का बहुत बहुत दुआओं भरा धन्यवाद है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, थैंक यू सो मच दीदी।